हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा, इस बार बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि क्या हम जब एक कॉन्शियस लाइफ को जीते हैं या फिर हम नेचर के प्रति थोड़ा सा भी कंसर्न होते हैं या अगर हम वीगरिज्म को फॉलो करते हैं, हम एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट है और जानते हैं कि ये दुनिया कैसे कंज्यूमरिज्म के पीछे पागल है, कैसे लोग ओवर बाइंग करते हैं, कैसे लोग ब्रांड्स के पीछे पागल हैं। तो जब आप इन चीज़ों को अच्छे से जान पाते हैं तो क्या आप उन लोगों से रिलेट कर पाते हैं, रेजोनेट कर पाते हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या आप अकेले रह जाते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है और इवन आप चाहे नेचर हो या फिर किसी भी तरह की एनवायरमेंटलिज्म एक्टिविटी में भी हो, उसमें भी आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिखते हैं, इवन कई बार क्लैशेस भी हो जाते हैं। तो क्या आपकी अपनी आइडियोलॉजी कितनी मायने रखती है और क्या आप इस तरह से आगे ज़िंदगी जी पाएंगे। और ये बहुत बड़ा मुझे लगता है ये इशू है, क्योंकि जैसे मैं अलग अलग तरह के मीटअप्स ऑर्गेनाइज़ कराता हूँ, वहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग आते हैं। इवन दो कुछ लोग पार्शियल इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि नेचर के प्रति कंसर्न होना कितना इम्पॉर्टेंट है, बट हर कोई अपने अपने लेवल पे इन चीज़ों की नॉलेज रखता है। हर कोई इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि क्या उसमें एनिमल क्रुएल्टी भी है या फिर इस चीज़ों को आगे उस डेप्थ पे भी समझा जाए कि क्या मेरे एक्शन और मेरे इम्पैक्ट से कोई एफर्ट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही आती कि जब आप इन सब के बीच में अपने आप को अकेले पाते हो तो उस कंडीशन में आप यूजुअली क्या करते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि हर कोई की नॉलेज का अपना अपना लेवल है, यानी किसी किसी को तो ग्रीन वॉशिंग नहीं पता है, किसी किसी को SDGs नहीं पता है, ठीक है। तो अपने अपने लेवल का नॉलेज हर कोई रखता है, किसी कोई इंसान कोई डेप्थ में जाता है, कोई कोई इंसान SDGs के बारे में अवेयर होता है, किसी किसी को ग्रीन वॉशिंग के भी बारे में नहीं पता है। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पहाड़ों से हैं और वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि नेचर की एग्जिस्टेंस से ही उनका रोजी रोटी है, उनको इको टूरिज्म से ही सपोर्ट मिलता है, बट फिर भी वो वेस्ट को बर्न करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी वेस्ट बर्निंग को बैन कर रखा है, बट क्योंकि उनको उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो इन चीज़ों में कई बार क्लैश कर जाते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लोगों को इस तरह से दिखाई जाती है जैसे कि वो बहुत टफ है, जबकि इंडियन कल्चर में ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम खुद बहुत जुगाड़ और रिसाइकिलिंग प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ आपस में क्लैश करके और इन चीज़ों की वजह से अकेले पड़ जाते हैं। तो इसमें मेरे सबसे बड़े ओपिनियन तो यही है कि कुछ मायने में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है, जैसे आपकी अपनी एक सॉफ्ट वैल्यूज़ और एक हार्ड वैल्यूज़ बनाई जा सकती है। सॉफ्ट वैल्यूज़ वो जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, जैसे कि अगर आप वेस्ट एक आपकी सॉफ्ट वैल्यू हो सकती है जिसमें आपने भले ही बोल दिया कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करोगे, बट आप प्लास्टिक के अगेंस्ट तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक का इन्वेंशन ही नेचर और प्लांट्स पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हुआ था। तो अगर हम प्लास्टिक के अगेंस्ट बिल्कुल ही जाते हैं तो हमें फिर से ही यही सब करना पड़ेगा और अगेन वही डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल। तो जैसे कि आपने अपनी सॉफ्ट वैल्यूज़ में ये बताया, दूसरा आपने बताया कि आप जब फॉसिल फ्यूल्स पे जाते हो तो आपकी हार्ड वैल्यू ये है कि आप पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज़ करोगे या फिर पर्सनल व्हीकल ओन ही नहीं करोगे, और आपकी सॉफ्ट वैल्यू है कि आप पेट्रोल और डीजल और ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको आप पूरी तरह से बॉयकॉट नहीं कर सकते, बट आप ये कर सकते हो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी सॉफ्ट वैल्यूज़ और हार्ड वैल्यूज़ भी रख सकते हो। जब आप नॉर्मल लोगों से कम्युनिकेट करोगे जिनको नेचर के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी लाइफस्टाइल से आप उनको ऑफेंड भी नहीं कर रहे हो, आप किसी को पुश भी नहीं कर रहे हो, फोर्स भी नहीं कर रहे हो, तो ये सॉफ्ट वैल्यूज़ और हार्ड वैल्यूज़ वाला प्रिंसिपल इस तरह से रखेगा। तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ ये है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि इस इतनी टफ लाइफ, हर किसी को ये लगता है कि ये इंसान परचेज भी नहीं करता, ये इंसान पैदल ज़्यादा चलता है, ये इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, ये इंसान खाने में भी प्लांट बेस्ड डाइट खाता है, ये इंसान ट्रैवल भी ऐसे करता है, बातें भी ऐसे करता है और ज़्यादातर अपना टाइम एक्टिविज्म, एनवायरमेंटलिज्म और इन सब चीज़ों में बिताता है। तो इसका सर्वाइवल कैसे होता है, ये लाइफ में कैसे जी पाएगा, ये सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा, हर किसी के किसी ना किसी चीज़ पे डाउट होते हैं। जैसे इंसान कोई वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो उसको हर कोई ये बोलता है कि मसल गेन कैसे करेगा, और मसल गेन के लिए सबको पता है कि अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच में है और आपका हाइट 170 के आसपास, मतलब आपका BMI काफ़ी अच्छा है, तो आपको हार्डली 75 टू 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए जो कि आपको इजीली प्लांट से मिल जाता है। बट इन चीज़ों को समझाए कौन, और ये चीज़ें जब हर किसी से होती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउट देते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल का डाउट, आपकी लाइफस्टाइल से डाउट उनको जब क्लियर हो जाएगा जब आप लेड बाय एग्जांपल पे जाओगे। यानी अगर आप अपनी तरह की लाइफस्टाइल जीते हुए भी बहुत हंसते हुए रहोगे, स्माइलिंग रहोगे और सक्सेसफुल रहोगे तो हर कोई फॉलो करेगा। जैसे मैं अपनी छोटी बहन का एग्जांपल देता हूँ, मेरी छोटी बहन ने 12th टॉप किया था और वो उसका एक तरीका ये था कि वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करती थी, मतलब बहुत चिल करती थी, प्लेस्टेशन पे गेम खेल रही है इवन 12th बोर्ड होने के बावजूद भी, और वो बहुत याद आ, लेकिन उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थी और काफ़ी स्पिरिचुअल भी थी वो। तो यानी जब वो मतलब पूजा पाठ और इन सब में लगती थी तो वो लगभग एक एक दो दो घंटे आराम से टाइम स्पेंड करती थी। तो उसके फ्रेंड्स ने ये चीज़ नोटिस की और उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने भी ये चीज़ नोटिस की, और फाइनली हुआ ये कि उसके मतलब जब रिजल्ट आया, जब 12th का उसने टॉप किया, तो उसके सारे फ्रेंड्स ने ये सोचा कि जस्ट बिकॉज ये पूजा पाठ करती है इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ है, जबकि उसकी मेहनत, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका होमवर्क करने का तरीका, उसका क्या पैटर्न याद करने का, ये किसी ने नहीं देखा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिस की है, मैं बॉर्न वेजिटेरियन था और अब मैं वीगन हूँ, लेकिन मेरा एक कलीग था, मेरा एक जूनियर था जो बहुत बोलता था, इंस्टेड ऑफ मैंने उसको वर्बली ना समझा के वो ये बोलता था कि लोग अगर आपको बॉडी में मीट चाहिए तो आपको मीट खाना ही पड़ेगा, और इन चीज़ों पे काफ़ी मेरे उससे आर्गुमेंट हो सकते थे, बट मैंने उसको वर्ड वाइज रिप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल दी। वो मुझसे काफ़ी इंस्पायर था, वो मुझे काफ़ी फॉलो करता था, और जब उसने देखा कि मैं काफ़ी अपने फील्ड में अपने लेवल पे काफ़ी सक्सेसफुल हूँ, मुझे बाकी टीम मेंबर्स से रिस्पेक्ट मिलती है, इवन CEO भी मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, और लाइफ में भी मैं अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ, तो उसने ये चीज़ को फॉलो करना शुरू किया कि शायद सर कॉन्शियस ईटिंग में बिलीव करते हैं, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि व्हाट यू ईट व्हाट यू विल बिकम, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये चीज़ बोली जाती है। और ये चीज़ जब उनके पेरेंट्स ने बोली या कहीं ना कहीं से उनकी दादी से सुना, जैसे वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन है बट उनकी दादी प्योर वेजिटेरियन है, तो उनकी लाइफस्टाइल, उनका हाइजीन प्रैक्टिसेस, ये उन्होंने फॉलो किया। और उसने एक दिन खुद मेरे को आके बोला प्राउडली, जबकि वो बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था, उसने खुद आके बोला कि मैंने मीट कम्प्लीटली गिव अप कर दिया, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज मैंने जब वेजिटेरियन से वीगन हुआ था तो मेरे लिए पनीर एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, तो मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ। और मुझे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड ने इतना ही बताया कि पनीर इज़ ऑलमोस्ट सेम टेस्ट और जो भी होता है उसका नॉन वेज जैसा ही होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप किसी को अपने एग्जाम्पल से लीड करोगे, रेदर देन आप उनकी बातें काटो, आप उनको फोर्स करो अपने जैसा खाने का, अपने ऐसा बनने का। ऑब्वियस सी बात है, मैं कई बार इन चीज़ों को समझता हूँ कि वीगनिज्म इज नॉट ए लाइफस्टाइल, नॉट ए डाइट, इट्स ए एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, वो एक तरह का आंदोलन है ताकि आप एनिमल लिबर्टी को फॉलो कर पाओ। बट इससे आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि ये आपका हार्ड वैल्यू है तो इसको हार्ड वैल्यू रखो और इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। मेरे साथ ये होता है कि मैं किसी को जब इंडिकेशन देता हूँ तो इस तरह से देता हूँ, मेरे लिए वीगनिज्म एक हार्ड वैल्यू है और मैं किसी को भी सामने, मेरे सामने कोई नहीं खा सकता, तो मैं अपने एक्शंस कहीं ना कहीं, अपने वर्ड्स और कहीं ना कहीं अपने कंटेंट के थ्रू मैं ये बता ही देता हूँ कि मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता, और मैं इवन उससे भी इंसिस्ट करता हूँ कि हो सके तो वो भी वीगन हो जाए, लेकिन मेरा बोलने का तरीका और मेरा ये सब इतना रूड नहीं होता। तो इसलिए आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड टू हैव ए वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, और इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हर कोई ये जानता है कि कोई क्या करता है, मुझे लगता है कि हर इंसान के अपने एक रूल्स होने चाहिए, तो बाद में वही इंसान अपने रूल्स से जाना जाता है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि ठीक है आप चाय नहीं पियोगे, आप दूध नहीं पियोगे, तो वो ये चीज़ समझ जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा इंस्टाग्राम देखा है। तो यही बात है, जैसा कि मैंने बताया, इन तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, मुझे नहीं लगता कि आप अकेले रहोगे और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही डीप रिलेशन आप बनाओगे, चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, आपकी फैमिली हो, या फिर आपका अपना लाइफ पार्टनर। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया बट मुझे बताइए आपको इस एपिसोड में सुन के कैसा लगा। इस एपिसोड में अगर कोई बात है, जैसे मैंने बताया कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, किसी न किसी से हो सकता है कि मेरा ओपिनियन मैच ना खाए, बट मैं आपके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करूंगा और मैं चाहूंगा तो आप अपना पर्सपेक्टिव मेरे इंस्टाग्राम में DM करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Naman4Nature। अगर आपको मुझसे कुछ भी कहना है या आपको मुझे जस्ट एक इनकरेजमेंट के लिए अप्रिशिएट करना है तो आप डेफिनेटली मुझसे बात करो, हो सके तो आपकी एक एडवाइस मुझे और भी बेहतर बना देगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू, बाय एंड स्टे स्माइलिंग।